खिड़की बहनों की सारी बंद है, हवा नहीं चाहिए, फागी बहुत है। थोड़ा एक दो खोल दो मेरी तरफ की। ओम शांति। क्या कहते हैं सभी? भूल गए इतने जल्दी? क्या माताओं का ध्यान खिड़की पे चला गया फिर? बस भाई बहुत हो गई, बस कह दो, बस हो गया। क्या कहते हैं सभी?
बस बस।
और बाबा क्या कहता है? बाबा ने ये कहा कि तुम सबने बहुत प्यार और अधिकार से कहा बाबा मेरा है, तो बाबा भी उसी प्यार से कहता है तुम बच्चे मेरे हो। कितना समीप का नाता है ना भगवान से, बहुत दूरी थी अब बहुत नजदीकी हो गई। हुई या नहीं कहने की बात नहीं है, हमें अपने से पूछना है समीपता हुई या हमारे लिए वो अब भी भगवान ही है, सोचना है। दूरी है, डर है उससे, या बहुत प्यार भरा नाता जुड़ गया है उससे, ये अपने से पूछना है। मेरापन, सभी माताएं बैठी हैं, भाई गृहस्थी बैठे हैं, सब जानते हैं कितना मेरापन होता है बच्चों में। जरा सा पढ़ाई ना पढ़े माता दुखी हो जाती है, पढ़ती नहीं है, मोबाइल पे रहती है सारा दिन। अपनापन, अपनेपन में कुछ एक दूसरे से कामनाएं भी रहती हैं। तो बाबा भी हमारा है और वो ये चाहता है कि जैसे मैं निरंतर सेवा में उपस्थित हूं। है बाबा निरंतर सेवा में उपस्थित? कल्याण करने आया है, हम सभी को हमारा अधिकार देने आया है, तो बहुत बड़ी सेवा में उपस्थित है। बाबा चाहते हैं तुम सब मेरे बच्चे भी सेवाओं में निरंतर उपस्थित रहो। कैसी कैसी होती हैं सेवाएं? एक तो ये सेवा जिसके लिए आप सभी आ गए हैं यहाँ, यज्ञ सेवा, प्रदर्शनी म्यूजियम समझाने की भी सेवा। अब तो प्रदर्शनियों का खेल चलता है या नहीं सेंटरों में? बंद हो गया वो तो, पहले बहुत था, उससे ही बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हुई, अनेक सेंटर प्रदर्शनियों से खुले, मेलों से नहीं खुले, प्रदर्शनियों से खुले, क्योंकि थोड़े थोड़े लोग आते थे, अच्छी तरह समझाया जाता था। और क्या सेवा हो सकती है? मैं आपकी आपका ध्यान दो तरह की सेवाओं की ओर ले चलता हूं। एक, जब हम दूसरों के संपर्क में आते हैं, निरंतर आते हैं ना, हम दूसरों के साथ ही हैं, तो हम सभी को खुशी देते चले, कला है बहुत बड़ी, दूसरों को खुशी देना। कई लोग देते हैं, कई नहीं दे पाते, तो क्या देते हैं खुशी के बदले? बोलो क्या दे देते हैं? भाई देते होंगे, और क्या दे देते हैं? आप अपने घर में जाएं, भाई लोगों से पूछ रहा हूं, एकदम खुशी का माहौल हो जाए, या और कुछ हो जाता है? हैं? डर, डर का हो जाता, पापा आ गए। और क्या हो जाता है? घबराहट भी हो जाती है। वर्तमान समय, खुशी का माहौल बनाना इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। खुशी के लिए क्या कहावत है? खुशी जैसी खुराक नहीं। दूसरा क्या कहते थे? गम। बोलो गम। धम जैसा रोग नहीं। माताएं तो ज्यादा जाननी चाहिए, लेकिन अब इसको बदल दो थोड़ा सा, भय जैसा रोग नहीं, अब गम से भी ज्यादा। भय का माहौल है दुनिया में, कोरोना ये बीज डाल गया है भय के, और अब बहुतों के अंदर बिना मतलब का भय, बिना कारण के भय, बिना किसी घटना के भय, एक अंदर की घबराहट, ये कुछ लोगों में दिखाई देती है। तो एक हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी खुशी का माहौल बनाना, अपने घरों से शुरू करेंगे, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये सेवा है बाबा का बनने के बाद, जिन घरों में खुशी का माहौल हो गया है उनसे बहुत सेवा होती है। बोलो ठीक है ये बात? और जिन घरों में लड़ाई झगड़े अभी भी हैं वहां क्या होता है? लोग कहते हैं ओम शांति में जाते हैं, आगे तो आप समझ ही गए हो। एक बहन ने सुनाया, बेचारी छोटी है, शादी हुई उसकी, सास ज्ञान में है बहुत साल से, कहा मैं ही उसे सेंटर में रोज छोड़ने जाती हूँ कार से, मैं ही लेने आती हूँ, लेकर आती हूँ, और मुझे मेरी सास बहुत पीटती है। क्या है भाई, वो तो हो जाने। तो ऐसा भी हो जाता है ना, डिसर्विस होती है। तो हमें खुशी का माहौल बनाना है। कर्म में जब हम हैं तो क्या दिखाना है अपने जीवन से? उदारता, उमंग, उत्साह। बोलो भाई, बोलो कम से कम 10 उत्तर। चलो भाई बोलेंगे, कर्मों में ज्यादा आप है ना बाहर, क्या दिखाना है? ठहरो इन्हें बोलने दो। और क्या दिखाना है? स्नेह दिखाना है, सरलता दिखाना है। पीछे वाले भाई बोलो, हैं? समानता। कुछ अच्छी बातें बताओ, मजा नहीं आया? देखो आप कर्म क्षेत्र पर हैं, यदि आपको तनाव बहुत है तो लोगों को अच्छा लगेगा, तो क्या दिखाना है? तनाव रहित काम करना। माताएं बताओ कर्म क्षेत्र पर क्या दिखाना है अपने जीवन से? नम्रता दिखानी है। ठीक बात है ना? ये हल्के हैं हम बहुत, बोझ नहीं है काम का, गृहस्थ का भी बोझ नहीं है, बच्चों का भी बोझ नहीं है, ये दिखाना है जीवन से। निरहंकारिता दिखानी है। और क्या दिखानी है? दो तीन चीजें और बताओ। एक दूसरे को रेस्पेक्ट हम देते हैं, और जोड़ो इसमें, एक दूसरे को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर कर्म क्षेत्र से कोई नोट करे इनमें तो ईर्ष्या बहुत है, तो सेवा नहीं होगी। हमें कर्म क्षेत्र पर संतुष्टता दिखानी है। संतुष्टता, हम संतुष्ट हैं। ठीक बात है? बहुत संतुष्ट हैं हम। क्यों संतुष्ट हैं? हाँ, जब भगवान मिल गया तो हम संतुष्ट हुए। पूछेंगे अपने से सभी, क्या ये सत्य है कि भगवान मिल गया तो हम तृप्त हुए? पूछें सभी अपने से, ये कहां तक सत्य है, कहां तक हमारे जीवन में आया है? तो हमें ये दो तरह की सेवाएं अब करनी है। मेरी ओर ध्यान दो, उनको बैठ जाने दो। खुशी का माहौल कैसे बनाएं? घरों में चले अपने अपने, कौन सी बातें हैं जो परिवार में खुशी का माहौल नहीं बनने देती? ठहरो, इनसे पूछना है मुझे, जो परिवारों में रहते हैं ना। बोलो, पहले भाइयों का नंबर है। नहीं तो कहेंगे माताओं ने सब बता दिया, बचा ही नहीं कुछ। बोलो, प्रैक्टिकल अनुभव से बोलो। ठहरो बहन, चुप रहो, बोलो। संस्कारों का टकराव, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये, घरों में खुशी का माहौल नहीं बनने देता। और बोलो, ठहरो एक उत्तर और भाइयों से, फिर बहनों की ओर आएंगे। बहनों का ज्ञान कलश छलक रहा है जरा। बोलो भाई लोग, एक उत्तर और दो। क्रोध है या नहीं? क्रोध आता हो किसी भी कारण से तो घर में खुशी और शांति का माहौल रहेगा नहीं। अब बहने चलो अमृत कलश छलकाओ अपना अपना, माताओं को भी दिया है ना, है? हाथ उठा के बोलो। अच्छा, अब अंग्रेजी बोल रही है। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा, कामनाएं एक दूसरे से ज्यादा रहती हैं। और बोलो, हाथ उठा के तो एक ही, ज्यादा ज्यादा मोह। मोह का यहाँ एक दूसरा रूप हो जाता है कि सब ये चाहते हैं। मान लो बच्चों से मोह है तो भाई बच्चे मोबाइल पे न रहें ज्यादा, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, कामकाज है तो उस पे ध्यान दें। मोह का ये रूप हो जाता है। वो मोह तो रहता नहीं जो छोटे बच्चों से होता है, बच्चे बड़े हो गए तो मोह का रूप बदल जाता है। और बोलो, पीछे वाले बोलेंगे। ईर्ष्या, ठीक है। मुख से कैसे वचन बोल देते हैं जो खुशी नष्ट हो जाती है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बातें तो हर घर में कुछ ना कुछ होती ही रहेंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि बातें ही ना हो, अनेक बातें आती हैं। लेकिन बोल हमारे कैसे हो? बोलो, नहीं मीठे ही नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई, थोड़ी नई बात बताओ। बहुत पॉजिटिव हो, जोड़ने वाले हो, एप्रिशिएट माना एक दूसरे की प्रशंसा करने वाले हो। और बोलो, उत्साहित उमंग बढ़ाने वाले हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हो, सम्मान देने वाले हो। बोलो, है? आशंका वाले ना हो। बहुत, आपने तो पावरफुल बात बता दी, क्योंकि मेरे पास ये केस आते रहते हैं छोटे मोटे, और घरों में इससे झंझट होता रहता, ज्ञानियों में हो जाती आशंकाएं। आशंकाएं समझे ना, थोड़ा एक दूसरे के प्रति अनुमान, बहम, शंका, इससे भी हमें बचना है। एक परिवार, बहुत बड़ी पोस्ट से वो भाई रिटायर हुआ, बुजुर्ग हो गए, 65 साल से आगे हो गए, उनके युगल को हमेशा शंका रहती है, पति पता नहीं किससे बात करता है, वो बेचारा बड़ा आदमी रहा है, किसी का फोन आ गया, बात कर रहा है, पहुंच जाती है, किससे बात हो रही है, गड़बड़ तो नहीं है कहीं? अब वो बेचारा मेरे पास आया, डिप्रेशन में जा रहा, कहा इसने तो मेरा जीवन तबाह कर दिया है। अब बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, बड़ी बोझ से, मैं बताऊंगा नहीं। तो ये शंकाएं भी घर के माहौल को बहुत खराब कर देती हैं। इसलिए एक दूसरे में विश्वास। और ये सब क्यों होता है कि बाबा की ओर कम देखते हैं, एक दूसरे की ओर ज्यादा देखते हैं। बहनों में ये इच्छा होती है पति मेरी आज्ञा में चले, सब में नहीं, कहीं कहीं। और कहीं पुरुषों में ये होता है कि घर के सब लोग मेरी आज्ञा में चलें। अभी अभी मैं बाहर गया था, जब बात हुई प्रोग्राम में, बहुत पैसे वाले लोग आए थे, तो कहा एक लड़की की शादी हुई साहूकार घर से, साहूकार घर में, लड़की बड़ी डॉक्टर। घर में जाते ही ससुर ने कहा, सास ने कहा, यहाँ तो पल्ला करना पड़ेगा, सबसे मुंह ढक के रखना पड़ेगा। अब वो बड़ी डॉक्टर, कहते एक मास में डिवोर्स हो गया। उसने कहा मैं यहां नहीं रहूंगी। अभी आजकल तो संभव नहीं है ना, या डॉक्टर वो भी छोटी मोटी नहीं। तो देखो एक छोटी सी बात पर कितना बड़ा निर्णय हुआ। छोटी बात थोड़ा ही होती है, बड़ी बात होती है, बदनामी होती है, क्या क्या होता है समाज में। तो मनुष्य अपने को नहीं बदलता, जो पुरानी मान्यताएं हैं उन पे चल रहा है। अब पुरानी मान्यताओं को थोड़ा तो समय अनुसार बदलना ही पड़ता है। समय बदल गया है, रीति रिवाज बदल गए हैं, सारा समाज बदल गया है ना। तो हमें भी समय अनुसार अपने को बदलना ही होता है। जो समय अनुसार अपने को नहीं बदलते वहां गड़बड़ बहुत होती है। ये ठीक है कि हमें बहुत गिरावट में नहीं आ जाना चाहिए, पर समय अनुसार जैसी समय की मांग है अपने व्यवहार को थोड़ा तो बदलना पड़ता ही है। अब घरों में खुशी का माहौल बनाना है, दो चार नियम अपने परिवारों के लिए सभी बना लेंगे, एक दूसरे को कहेंगे भी, कहना तो पड़ेगा, अब घर के बड़े हैं कहना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छी घटना सुनाता हूं। एक लड़की बहुत होशियार पढ़ाई में, अब वो बहुत होशियार थी तो उसे ज्यादा तो पढ़ना नहीं होता, होशियार बच्चों को कोई रात दिन पढ़ना नहीं होता है। एमएससी फिजिक्स कर रही थी, उसकी माँ उसे डांटे, वो माँ है वो कम पढ़ी लिखी है, ये एमएससी कर रही, उसे डांटती रही, टीवी देखती है मोबाइल देखती है, पढ़ती नहीं है, क्या करेगी तुम। अब वो उसकी सुने ही नहीं, उसे और गुस्सा आए। जब रिजल्ट आया तो क्या आया होगा, क्या आया होगा, उसने यूनिवर्सिटी को टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया। फिजिक्स में गोल्ड मेडल लेना सहज काम नहीं है, सबसे कठिन सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो माताएं अपने बच्चों को ठीक से समझें। कभी कभी घरों में ऐसा भी होता है, मान लो बाप डॉक्टर है माँ भी डॉक्टर है, वो चाहते हैं मेरे सारे बच्चे भी डॉक्टर बने, चाहते हैं, ये होता है। कई कई परिवार हमने ऐसे भी देखे, ज्ञान में आ गए, 104 डॉक्टर हैं उनके चारों ओर परिवारों में, 104 में कोई बचा भी है क्या। अभी भी कोई मुझे मिला सूरत में, कहा हम सब डॉक्टर ही हैं, 15-16 एक ही इधर उधर के परिवारों में 15-16 डॉक्टर ही हैं। अभी लड़की की इच्छा है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो माँ बाप का क्या कर्तव्य है, माताएं बताओ, उसे डॉक्टर ही बनाना है या जो उसकी इच्छा है उसको महत्व देना है। उसकी इच्छा को महत्व देंगे तो पढ़ाई में उसको बहुत रस आएगा, और आपने जबरदस्ती नहीं हम तो डॉक्टर हैं तुम्हें भी डॉक्टर ही बनना है, तो उसको पढ़ाई में भारी बन भी होगा, और जो एक एजुकेशन की खुशी होती है वो भी उसको नहीं होगी। तो यहाँ आप सभी बैठे हैं, माँ बाप को अपने बच्चों को ठीक से समझना भी चाहिए। युग बदल गया है, 20 साल में युग बदल गया, 25 साल में कल्चर बदल गई हमारे देश की। अब वैसा नहीं होगा जैसे तब था जब आप छोटे थे, बिल्कुल नहीं होगा। तो घरों में खुशी का माहौल बनाना है। कोई बात हो जाए, अब एक दूसरी बात, कोई भी बात हो जाए बड़ों को समझदारी पूर्वक बातों को जल्दी से जल्दी बोलो खत्म कर देना चाहिए। जहां बातों को बहुत बढ़ाते हैं वहां वो बातें तूफान बनकर सबको उड़ा जाती हैं। कईयों ने बातों को बहुत बढ़ा दिया है, बढ़ाएंगे या घटाकर खत्म करेंगे। भाई लोग बोलें, बोलो बोलो उमंग से बोलो, वर्तमान की बातें और ध्यान देंगे बहुत पास्ट की बातें, जो बीत गया है। किसी का जीवन कैसा भी बीता हो उसको भुलाना है, भुलाने में ही भलाई है। मैरिज हुई, लड़की ने अपने पति को अपनी पहले की गलती बता दी। अब पति का काम था, लड़की इतनी ऑनेस्ट है, अपनी गलती बता रही है, उसको और प्यार देना। उसने रिजेक्ट कर दिया, तुम ऐसी हो। मैंने उसको कहा, अभी तुमने समझा नहीं था तुम्हारा पति कैसा है। हर एक को हर चीज नहीं बतानी होती है। पास्ट किसी का कैसा भी रहा हो, अब हमें अपने वर्तमान को सुखी करना है ना। पास्ट में जीते रहेंगे तो कठिनाइयों में जिएंगे। पास्ट के लिए हिंदी में एक कहावत है, जब कोई पुरानी बहुत बातें करता है ना तो उसे लोग क्या करते हैं, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। अब गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ेंगे तो सुगंध मिलेगी, इतनी बदबू के खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। ताजमहल में जाओ, ऊपर तो कबर है शाहजहां और उसकी नूरजहां की बनावटी कबर जिसको देखते हैं, लेकिन उसके नीचे 6-8 फुट नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं उनकी रियल कबर है। हमने सोचा हम भी देख कर आए। वो तो उखड़ी हुई नहीं है, अभी बंदी है, लेकिन वहां मुर्दे की इतनी बदबू अब तक है। 400 साल हो गए उन्हें, 350 हो गए होंगे मरे हुए, अब तक बैड वाइब्रेशंस, बदबू। तो गड़े मुर्दों को अगर उखाड़ेंगे बदबू फैलेगी जीवन में। इसलिए सभी भाई बहने, जो भी पास्ट हो गया उसको पूरा करके अब वर्तमान का आनंद लें। पास्ट की किसी बात के कारण वर्तमान के जो हमारे संबंध हैं उनमें कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए, नहीं तो घरों में खुशी का माहौल नहीं रहेगा। और माँ बाप को तो बहुत ध्यान देना है कि अगर माँ बाप के अच्छे वाइब्रेशंस नहीं हैं तो बच्चों पर, बोलो बच्चे बैठे हैं, बहुत बुरा असर होगा, जिसका कभी कभी माँ बाप को पता नहीं चलता। माँ बाप के बीच में रोज ही मन मुटाव होता है, कहा सुनी होती है, बच्चों पर उसका अति अति बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों के भविष्य को भी ख्याल में रखते हुए बड़ों को चाहिए वो अपने को जल्दी शांत करें। और एक घटना सुना देता हूँ, अब घटनाएं तो बहुत आती है ना मेरे पास, ज्यादा तो मैं फोन खोलता नहीं, थोड़ा सा। भाई जी, मेरी सास मेरे से बहुत लड़ती है। ठीक है, तुम भी लड़ती हो? मैंने पूछा, तुम भी लड़ती हो या लड़ाई एक ही हाथ से होती रहती है? कि नहीं, मुझे भी लड़ना पड़ता है फिर। मैं कम क्यों रहूं? बस मैंने इतना ही कहा, तुम चुप हो जाओ, लड़ाई पूरी हो गई। हो सकता है ना, जो समझदार हो उसे चुप हो जाना चाहिए ना। फलाना व्यक्ति मेरे से बहुत लड़ता, सास बहू की बात नहीं कहीं भी, फलाना व्यक्ति हमसे बहुत लड़ता है, हम लड़े नहीं, थोड़ा चुप रहें, बहुत अच्छा। मैंने एक प्रयोग कराया, माताओं के लिए खास है वो, बच्चे मेरी नहीं सुनते। मैंने पूछा, बच्चे कितने बड़े हैं? 24 साल का, 26 साल का। बोलो माताएं क्या कहेंगी? देखने लगी एक दूसरे को, अब वो सुनेंगे अभी भी। अब उनकी शादी हो गई है, वो अपनी पत्नियों की सुने या आपकी सुने? जरा मैं खोल के बात कर रहा हूं। चलो, माताएं सोच रही है। दोनों की सुने। मैंने इस माता को 4-5 केस हुए ऐसे, मैंने एक्सपेरिमेंट कराए। मैंने उसे कहा, अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए ना, वो भी तो समझदार होंगे या बिल्कुल समझदार नहीं है? हैं तो सही। मैंने कहा, 1 मास तुम उन्हें कुछ न कहो, स्वतंत्र छोड़ो, जरा कुछ काम तो नहीं बिगाड़ रहे हैं ना? वो कि नहीं, घरों में छोटी छोटी बातें, ये ऐसा न करना, ऐसा क्यों किया, वहां क्यों गया। मैंने कहा एक मास बिल्कुल न कुछ को, चुप हो जाओ तुम ज्ञान वालों को, देखो क्या परिणाम होता है। परिणाम ये हुआ 15 दिन के बाद ही बच्चे पीछे पीछे, मम्मी नाराज हो गई क्या, आजकल डांट डपट नहीं करती, क्या बात हो गई है। रौनक घर में खत्म हो गई, मम्मी डांट डपट कर देती थी एक दो बार। तो हम दूसरों को सुनाते ज्यादा हैं, थोड़ा सा कम कर दें, घरों में खुशी का माहौल हो जाएगा। और जब बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार लगे आपको, तो उन्हें अपना फ्रेंड मान लो। अब ये बच्चे ही हैं मेरे, इस भावना से थोड़ा ऊपर उठ जाओ, उन्हें अपने सहयोगी बना लो, कामकाज में उनकी राय लेने लगो, तो देखो उनमें मैच्योरिटी आएगी और वो समझदार बनते जाएंगे। तो हर एक के हाथ में है, अपने घर में खुशी का माहौल स्वयं बनाना। बड़ी बातों को छोटा करके जल्दी खत्म करेंगे, जो बीत गया है, जो पास्ट हो गया है, खत्म करेंगे उसको। खत्म करो पास्ट को, बढ़ाओ नहीं। पसंद है दोनों बातें? बोलो भाई लोग, पसंद है? करना है ये, नहीं तो क्या होता है, हमारी सारी शक्तियां इनमें नष्ट हो जाती हैं। और जब फिर कोई परिस्थिति जीवन में आती है तो मनुष्य खाली होता है, उसका सामना करने की शक्ति उसके पास नहीं रहती। कर्म क्षेत्र पर हम सब हैं, कर्म करते हुए एक बड़ा गुण जो दूसरों पर गहरी छाप छोड़ता है वो है सरलता, हल्कापन। बहुत हल्के रहकर काम करेंगे। भाइयों के लिए विशेष, जिनको जिम्मेदारी होती है, जो कार्यों में रहते हैं, नौकरी पे रहते हैं, और ये हल्का कैसे रहा जा सकता है, बहुत प्रैक्टिकल बात सुनाएंगे। और जो बात आएगी उसको करना है सबको। कैसे रह सकते हैं प्रैक्टिकल में बहुत हल्के, दो तीन बातें सुनाओ। साक्षी भाव तो बड़ी चीज है, थोड़ा है और बोलो। एक छोटी सी बात आप अपने नशे में समा लें, सभी बाबा मेरे साथ है, पावर बढ़ जाएगी। बाबा ने जब जब कर्म योग पर मुरली चलाई है तो ये बात कही है। तुम अकेले काम करते हो, अगर बाबा को साथ लेकर काम करो तो कई गुनी शक्तियां बढ़ गई ना, तुम्हारी स्वयं भगवान तुम्हारे साथ हो गया। केवल स्मृति, ज्यादा कुछ नहीं, कोई मेहनत का काम नहीं, कोई एकाग्रता की बात नहीं, इसको अपने नशे में लाओ। जब से हम ब्राह्मण बने हैं स्वयं भगवान का हमें साथ मिल गया है, वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। अभी 2-3 दिन पहले एक बात आपने नोट की होगी और बहुत सुंदर है, बाबा ने कहा बच्चे, 3 दिन पहले की मुरली में थी, शुरू की पॉइंट थी, आपको याद आ जाएगी। अब तुम अपने को मेरे हवाले कर दो, याद आया? चिंतन करेंगे इस पर, क्या हमने अपने को भगवान के हवाले कर दिया है? देखना इसमें कितना आनंद है, कितनी शक्तियां हैं, वो हमारे लिए क्या क्या करता है। हमें अपने लिए सोचना नहीं पड़ेगा, हमारे लिए वो सोचेगा, केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी वो सोचेगा। ओम शांति भवन में एक बार अव्यक्त बाबा की मुरली चल रही थी, भाई लोग का ग्रुप था बड़ा। बाबा ने अव्यक्त में भी ये मुरली चलाई, साकार में तो चली है। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं वो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। बहुत सुंदर और गहरी और बहुत प्रैक्टिकल बात है, केवल भावनात्मक परिवर्तन की बात है। तो उनके तो भाई आगे जो बैठे थे ना, उनमें से एक ने पूछा बाबा से, बाबा हम तो ज्ञान में हैं, हमारे बच्चे तो नहीं हैं। तो देखो बाबा का उत्तर, उनकी भी सब आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, इच्छाएं नहीं। अंडरलाइन कर दिया, इच्छाएं तो कुछ भी हो सकती है ना, इच्छाएं नहीं। पर हम बाबा के बन गए, हम अपने को बाबा के हवाले कर दें, चिंतन करेंगे सभी बहुत अच्छी तरह। समर्पणता एक बात है, लेकिन इससे भी ऊपर की स्थिति हो गई, अपने को भगवान के हवाले कर दो, तुम्हारे हवाले, हम हमारा जीवन तुम्हारे हवाले। देखो क्या करता है वो, वंडरफुल अनुभव होने लगेंगे रोज जीवन में। इससे हल्कापन आ जाएगा, लगेगा हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, नीचे काम कर रहे हैं, डोर उसके हाथ में नचा रहा है। भक्ति में भी ये मान्यता है। अब प्रैक्टिकल में ये हमें अनुभव होने लगेगा, स्वयं सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रहा है, हम केवल निमित्त हैं, उसका कार्य ये कर रहे हैं। घर में रहने वाले सभी ये करेंगे, यानी ये काम समर्पित होने वालों का है। आप सभी अपने को बाबा के हवाले करके हल्के हो जाओ। कितनी माताओं के ही अच्छे अनुभव हैं, माताओं के, क्योंकि माताओं पे भगवान ज्यादा राजी रहता है, रहता है या नहीं। आज भी मैं आया तो माताओं का साइड भरी हुई, भाई चार ही बैठे, क्या देखो ये माताओं पे इसलिए भगवान राजी है। बहुतों को जब समस्याएं आई जीवन में, समस्याएं ऐसी आई, बच्चों की शादियां करानी, पैसे की कमी है, कैसे बाबा ने उनके काम पूरे किए, ये उनके वंडरफुल अनुभव थे। बाबा के भरोसे जीते हुए अपने को हल्का कर दो। दूसरा इफेक्ट होता है मनुष्य के व्यवहार का, जिसमें दो बातों पर सभी को बहुत ध्यान देना है, नम्रता और हमारे अच्छे बोल, अच्छे बोल। और हम बोलना सीखते हैं बाबा से। मैं बहुत बार देखता हूं और सोचता हूं, शिव बाबा जैसा सुप्रीम टीचर संसार में न कोई है न होगा। पढ़ाने का एक अलौकिक तरीका, पत्थरों को पारस बना दिया, जिनकी बुद्धि नहीं थी उनको बुद्धिमान बना दिया, जो हीन भावनाओं में आ गए थे उनको जगा कर ऊंचा उठा दिया, जो सोचते थे हम किसी काम के नहीं हैं, उन्हें अपने काम में लगा लिया। बाबा जैसा सुप्रीम टीचर संसार में कोई नहीं। पढ़ाने का तरीका, बात करने का तरीका, अपने बच्चों को प्यार देने का तरीका सीखना हो तो बाबा से ही सीखा जाएगा। बहुत सुंदर ये, आप कहेंगे हमने तो बाबा को देखा नहीं, पर बाबा को कहां से देखा जा सकता है, बोलो, उसकी मुरली से। आप उसकी मुरली, साकार मुरली रोज की, जरा इस ध्यान से सुनना, भगवान हमसे बातें कर रहा है। कभी तो बाबा कहता है बच्चे मेरा भी तुमसे मोह हो गया है, मैं तुमको कब से देखना चाहता था, सोचता था कब जाऊं नीचे अपने बच्चों के मुखड़े देखूं, मुझे भी इंतजार थी तुमसे मिलने की। चढ़ा दिया ना हम सबको, कहा हमें इंतजार थी भगवान से मिलने की, अब पता चला उसे भी इंतजार थी हमसे मिलने की। एक और सुंदर बात सुना देता हूं, मैं अव्यक्त मुरलियां लिख लेता हूं ज्यादा थोड़ी, उनमें जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तो आज एक पॉइंट पड़ी छोटी सी, कि रोज सवेरे बाबा अपने माला के मणकों से विशेष मिलन मनाते हैं, देखते भी हैं क्या कर रहे हैं, आगे बहुत कुछ है। क्योंकि जो विशेष महान आत्माएं हैं उन पर उसकी निरंतर नजर रहती है। एक बार तो अव्यक्त बाबा ने कहा जो विशेष रतन है अश्रतन विशेष, उनको तो बाबा दिन में कई बार देखता है किस स्थिति में है, क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है और बातों में लगे हुए करते हैं ना कई लोग। तो बाबा की नजर रहती है अपनी महान आत्माओं पर। आप पे भी रहती है या नहीं? कौन है विजय रतन? अब बोलो ना। हम चुप हो गए सब, सोचते पता नहीं कौन होंगे, किस पर भगवान की नजर है। जो अपने को मानेंगे वो बन जाएंगे, और जो ये सोचेंगे वो तो कोई और हैं, तो वो और ही होंगे, और जो सोचेंगे हम हैं तो वो हम हो जाएंगे। ये को ये राज है। जब हम समर्पित हुए तो जानकी दादी यहाँ रहती थी बहुत, तो कहती थी माला में अपना नंबर फिक्स करो सभी, भाई मुझे इस नंबर तक पहुंचना है। फिर वैसी रेस होगी ना, पुरुषार्थ की रेस वैसी होगी, और चलो कुछ भी मिल जाएगा कोई बात नहीं, बाबा के पास आ गए, स्वर्ग तो हमारा है ही, अब उससे तो हमें कोई निकाल नहीं सकेगा, तो ढीले रह जाएंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें कहता है, अब तो मिट्टी की ईंटें भी बहुत महंगी मिलती हैं, और सतयुग में सोने की ईंटें भी फ्री मिलेंगी। सोच लो, देखो भगवान क्या देकर जाता है हमें, हीरे मोतियों से भरपूर हो जाएगा भारत। अब विनाश के डर को भूलकर जो आने वाला स्वर्णिम काल है उसकी छवि भी अपने नैनों में समाते चलना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये वर्तमान का खेल सहज पूरा हो जाएगा, साथ में आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाते चलें। आत्मिक दृष्टि बहुत जरूरत है। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, बहुत जरूरत है इस अभ्यास की। तो मेरा मेरा छूट जाएगा, क्या मेरा? मेरे बच्चे, ये मेरे हैं तो आपके ही, वो कोई छीनेगा नहीं आपसे। परंतु आत्मिक दृष्टि होने से बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी, और जब सबको घर वापस जाना होगा तो परेशानियां नहीं होंगी। तो कर्म क्षेत्र पर सरलता, नम्रता, अच्छे बोल, संतुष्टता, बहुतों को बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जीवन में, ऐसा पहने ऐसे रहें। अब कलयुग का अंतिम समय आ गया है, जेवर पहनने की तो बात खत्म हो गई है ना, चोरों का भी डर है। एक हंसी की कहानी सुना दो, अभी समय तो हो गया है। छोटेलाल कितनी मजे की कहानी है, दिल्ली में किसी भाई के घर चोरों को पता चल गया सोना बहुत है इसके पास, चोरी कर ली। अभी फटाफट सुंदर कार खरीद ली और नया मकान खरीद लिया और अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए। उनके पड़ोसियों को पता लगा ये तो गरीब थे, इनके पास ये पैसा कहाँ से आया। चुपचाप पुलिस को रिपोर्ट कर दी, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। पूछा कहाँ से चोरी की? उस घर से की है। अब उस घर में पुलिस पहुंच गई, सोना बहुत ज्यादा था, आपको बताऊंगा तो आपको आनंद हो जाएगा। मैं ये बाबा के महावाक्यों से ही कहा करता हूं कि जितना सोना अब संसार में है अगर उसको 9 लाख लोगों में बांट दिया जाए तो महल बने सकते हैं सोने के, इतना है अभी भी, उसके घर में भी इतना था। अभी इनकम टैक्स वालों ने रेड डाल दी, उसमें अपनी एक बहन ब्रह्मा कुमारी भी पुलिस में, तो वो पहुंच गए उस माता के पास, वहां बाबा का फोटो रखा हुआ था। चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं। अब उसने देखा ये तो ब्रह्मा कुमारियों का घर है, तो कहा सारा सोना उधर छुपा दो। मुझे भेजा ना इंक्वायरी करने, मैं कह देती हूँ यहाँ कुछ नहीं है, चले गए छोड़ के। पता चला वो व्यक्ति तो बड़ा वकील है। अब ये पुलिस वाले इनकम टैक्स वाले डर गए, फंस जाएंगे सारे, भागो यहां से। और इस ब्रह्मा कुमारी बहन को कहा भाई कुछ हो जाए तो तुम बचाना, ब्रह्मा कुमारी वाले हैं ना, तुम भी हो। तो इतनी हंसी परसों ही किसी ने सुनाई, इतनी हंसी आती रही, कहां चोरी हुई, चोरों को पकड़ के कहां पकड़े गए लोग, वहां तुम चिंता न करो मैं बैठा हूं। खेल बदल गया, उनका वो सारा सोना सुरक्षित रह गया। ये है बाबा का चमत्कार। तो हम बाबा के भरोसे जीवन जीना सीखें और संतुष्ट आत्मा बने। सभी ध्यान दें, इच्छाएं तो बहुत होती हैं, पर देखने वालों को लगे, वो खुद कहें इन्हें कोई बहुत बड़ी चीज मिली है, शांत हो गए, संतुष्ट हो गए हैं, पहले जो भाग दौड़ थी वो खत्म हो गई इनकी, जरूर इन्हें कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है। सभी भाई बहनों को इसका बहुत ध्यान रखना है। तो अपने कर्म क्षेत्र से और अपने घर के खुशी के माहौल को बनाकर बाबा की सेवाओं में बहुत वृद्धि करनी है। और लास्ट बात कह देता हूं एक और, सभी आप लोग जरूर अच्छे पुरुषार्थी हैं, समय निकालकर यहां आए हैं, आने वाले समय में हम सभी को दूसरों को बहुत मदद करनी है। जा नहीं सकेंगे किसी के पास, जैसे कोरोना में नहीं जा पाते थे ना, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अपने भी नहीं जाते थे, उठाने भी नहीं जाते थे, जला दो कहीं, फेंक फांक दो, किसी का किसी के घर में भी चला गया था। ये बहुत हो गए, हिंदुओं के मुसलमानों के घर चले गए, मुसलमानों के हिंदुओं के घर आ गए, कैसा खेल चला, वंडरफुल। तो हम अपने को ऐसा पावरफुल बनाएं कि एक जगह बैठकर वाइब्रेशंस देखकर आत्माओं के दुख हर सकें। जाने वाले तो चले जाते हैं पर कष्ट होता है रहने वालों को, हमें उनकी बहुत सेवा करनी है वाइब्रेशंस देखकर। इसलिए मधुबन में आए हैं, बहुत अच्छी साधना करेंगे, बहुत कुछ लेकर जाएंगे, जिसको एक मास भी रहना है वो अपने को भरपूर करके जाएं, यहां से यादगार बनाकर जाएं। बहुत माताएं मैं देख रहा हूं बार बार आती हैं सेवाओं में, बार बार आएं, ये भाग्य है बहुत बड़ा, भगवान के कार्यों में सहयोग देना, हम उसको बांध लेते हैं, वो हमें पूर्ण सहयोग करेगा विनाश काल में भी और द्वापुर से भी। तो बहुत अच्छा चिंतन करके अपने को तैयार करके जाएंगे। ओम शांति।